Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एकमात्र स्थान जहां पर सपने असंभव होते हैं वो है हमारा खुद का मन। अगर हम इस राज को जान ले तो हम किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। इस पूरे विश्व पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि असंभव है। बस हमें अपने मन को उसके पात्र बनाने की जरूरत है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, मन वो एक घोड़े के समान है जिसे कंट्रोल में रखने के लिए कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जिम्मेवारी हमारे खुद के ऊपर होता है। मन की कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिन्हें आज तक हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए। उनमें से एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत ज्यादा डरावनी बीमारी लगती है और जिसे होता है वही जानते हैं कि वो कितनी पेनफुल है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये बीमारी एग्जैक्टली होती क्यों है, उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये बीमारी है क्या।
मैं आपको बताऊंगा कि शुरू में अपने कि मन एक घोड़ा है
जी,
उसको कंट्रोल करना है ना। मतलब मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बात तो सही है कि भी इसको कंट्रोल करना है, लेकिन जब हम सोचते नहीं भी कंट्रोल करना है तो मुश्किल है। तो ये नहीं सोचो कि उसको कंट्रोल करना है।
ओके।
उसको ये सोचो कि उसको मैनेज करना है।
ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कंट्रोल करेंगे तो वो सप्रेस रहेगा।
तो सप्रेस नहीं करना, उसको सही रूप से मैनेज करना है। उसकी नीड्स को भी समझना है।
करेक्ट।
कि उसकी नीड्स क्या क्या है ना। शेक्सपियर की कहानी है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है बताने का।
हाँ जी।
कि बहुत अच्छी शेक्सपियर की कहानी है कि भी कैसे भी घोड़े को कंट्रोल करना है तो उसको प्यार से करो।
करेक्ट।
प्यार से करेंगे तो होगा, उसको कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगा। तो बस यही बात छोटी सी थी। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि स्किज़ोफ्रेनिया बहुत पावरफुल समझते हैं कि भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। लोग पूछते भी है कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है, है ना। तो एक तो ये बात है कि ये बड़ी बीमारी है डेफिनेटली, है ना, परंतु इतनी बड़ी नहीं भी है। मैं तो ये लेबल नहीं देता हूँ। कई बार लोग डायग्नोसिस लिखते हैं लेबल, मैं डायग्नोसिस नहीं लिखता। इसलिए नहीं लिखता, भले डायग्नोसिस है भी तो एक प्रकार से ये बड़ी बीमारी नहीं भी है, क्योंकि जैसे भी कैंसर बड़ी बीमारी है, परंतु हम जानते हैं कि कैंसर का डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेज में हो जाए और तुरंत इलाज हो तो ये क्यूरेबल है। तो ऐसे ही मैं तो ये कहता हूँ कि ये स्किज़ोफ्रेनिया भी है, तो आम भाषा में पागलपन। जैसे ना लोग जो कहते हैं कि भी जो मेंटल डिजीज है उसमें एक प्रकार से पागलपन है, तो वह तुरंत समझ में आए, शुरुआती जब उसकी हुई तब समझ में आए और फिर उसका इलाज हो तो ये क्यूरेबल है। दिक्कत यहाँ पर ही होती है कि भी बहुत बढ़ जाए ना तब तक इलाज होता ही नहीं है उसका। हाँ। है ना, लोग समझते कि कुछ भी नहीं है तो नाटक कर रहे हैं।
करेक्ट।
या तो इस पर किसी की छाया पड़ गई है।
हाँ,
है ना, ज्योतिष के पास जाओ, है ना, बाबा जी के पास जाओ, क्या क्या करो। फिर जब बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना तब फिर वो भुआ ही बोलता है कि नहीं अभी तो डॉक्टर के पास जाओ। और तब तक तो फिर बहुत देरी हो गई, है ना। अदरवाइज तो ये सचमुच क्यूरेबल है।
okay.
और ये भी कहेंगे सिर्फ एक जैसे हंसने की बात है
जी।
कि स्किज़ोफ्रेनिया मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। लेकिन वो 1% है।
okay.
वो 1% है तो प्रॉब्लम नहीं करता है। जैसे कि भी कैंसर के सेल्स हम सब में है, 2% कैंसर के सेल्स मेरे में भी है तो मुझे तकलीफ नहीं देता है, लेकिन वो 20% हो गए ना तो और तकलीफ देगा।
okay.
तो ऐसे ही वो जो टेंडेंसी है हम डिस्कस करेंगे तो 1-2% तकलीफ नहीं देती है, जब वो बढ़ गई तो वो समस्या करती है।
okay.
ऐसे है ना, वो बीमारी का रूप लेगी, कहने का भाव यह है। और ये बीमारी के बारे में सचमुच चर्चा करनी चाहिए ना। और पूरी हिस्ट्री भी अगर आप देखो नहीं, अगर इतिहास देखो मेंटल हेल्थ का, तो भी ऐसे भी पहले तो इनको पकड़ के रखते थे, चेन्स में रखते थे, है ना, कि भी जिंदगी भर उनको बांध के रखना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब दवाइयां नहीं थी।
करेक्ट।
फिर 1950s में दवाइयां आई, सबसे पहले क्लोरपोरमाइसिन नाम की मेडिसिन आई।
ओके।
कि जिससे पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ओके। कि भाई ये लोग कुछ हद तक ठीक होने लगे। बोल उसके अपने भी लिमिटेशंस थे, फिर और भी सेकेंड थर्ड जनरेशन मेडिसिन भी आ गई, अभी तो इतनी वंडरफुल है कि परफेक्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है।
Very nice.
सिर्फ आवश्यकता ये है, जो मूल बात जो है, मैं भी दर्शक भाई बहनों को कहूंगा कि जितना हो सके जल्दी, है ना, उसका इलाज करो। और कोई बहुत लंबा नहीं है, अगर आपने शुरू में किया तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। मैं अभी का आपको एक हिस्सा बताता हूँ। भी थोड़े दिन पहले ही कि भाई एक बहन को लेके आए, तो ना उसे ग्रेंड का कि सर ये बहुत सारे पेशेंट है लेकिन एक बहन सचमुच पागल है, है ना, वो सबको डिस्टर्ब कर रही है, है ना, अगर आप उसको पहले ले लो। तो भी नेक्स्ट उन्होंने लिया, तो मैंने उन्होंने कहा कि सर बहुत डिस्टर्ब एक कर रही है ना, एकदम सचमुच पागलपन करती थी, कि अब इसको आप एडमिट कर दो। रिलेटिव्स ने कहा, बेचारे लोअर मिडिल क्लास के थे ना, तो मैंने कहा कि पक्का आपको डिस्टर्ब तो कर रहा है, लेकिन आप मुझे 8 घंटे दो।
Okay.
अगर ये 8 घंटे में ठीक नहीं हुई तो आप एडमिट कर देना, फालतू खर्चा है, है ना, मुझे तो कोई हर्जा नहीं है, मेरी हॉस्पिटल आप एडमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ठीक हो गई तो आपका ही, मैं देख रहा हूँ कि आप तो लोअर मिडिल क्लास के है, तो है ना, ठीक हो जाए विदाउट एडमिशन तो नहीं, हाँ तो भले 8 घंटा तो हम कर सकते हैं। मैंने वहां ही उसको एक डोज दे दिया, सच मानो 8 घंटे में ठीक हो गई। आज वो एकदम नॉर्मल है, आज आपके पास आएगी तो हीरोइन जैसी लगती हो, है ना। तो बस वो है कि भी जल्दी, अभी उसको तभी हुआ था, शायद 2 दिन पहले ही हुआ था, वो जो अटैक आया था वो 1-1.5 दिन पहले आया होगा, वो तुरंत ले आए, उसका इलाज हुआ, और मैंने उनको ही समझाया कि अभी वो ठीक हुई, लेकिन अभी इसकी ट्रीटमेंट पूरा 1 साल चलेगी। ये नहीं कि अभी ठीक हुई 4 दिन में आप इसको बंद कर दो।
Correct.
प्रॉपर उसका इलाज करो, काउंसलिंग भी करो, उसका रूट कॉज भी ढूंढो कि ये हुआ क्यों उसको। तो जीवन में कभी भी नहीं होगा।
okay.
है ना, आप 1 साल के बाद भूल जाना कि ये कोई बीमार हुई थी।
जी।
जैसे और बीमारी में हम ठीक होते कि भी न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया का मैंने ठीक से इलाज करा लिया, अभी मुझे याद, अभी मुझे भी टाइफाइड हुआ था छोटा था।
जी।
अभी भूल गए कि टाइफाइड हुआ था इससे, है ना।
जी।
तो बस वो लेवल पर करना है, ये नहीं, मेन बात इसमें ये है, लोग ये नहीं कर।
बिल्कुल बिल्कुल
जी जी,
हम इसका ध्यान रखेंगे।
हाँ।
डॉक्टर साहब, ये बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया ये होती क्यों है? सबसे
अच्छा।
पहले रीजन क्या है? अगर रूट कॉज हम समझ जाएंगे तो शायद हम उसे समझ पाएंगे कि ये बीमारी होती क्यों।
परफेक्ट। हाँ। अब जैसे भी आमतौर पर तो ये कहते हैं, डॉक्टर को पूछेंगे तो कहेंगे केमिकल इम्बेलेंस है ना, वो केमिकल का लोचा है।
okay.
वो वाली बात है, तो बात ठीक है कि भी केमिकल डिस्टर्ब हुए, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि केमिकल डिस्टर्ब हुए उससे पहले भी कुछ हुआ। या तो केमिकल डिस्टर्ब क्यों हुए।
करेक्ट।
तो एक समझाने के मैंने कुछ सरल सरल से तरीके ढूंढे हैं, क्योंकि वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है ना, पेशेंट को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
करेक्ट।
तो इसको ऐसे समझा सकते हैं कि भी तनाव सबको आता है, है ना, छोटा बड़ा हो, गरीब है या तो नहीं बहुत पैसे वाला है, एक कारकुन है या प्राइम मिनिस्टर है, सबको टेंशन आना है। अब जो टेंशन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया जो होती है ना, वो अलग अलग है।
okay.
है ना, एक तो भी अच्छी प्रतिक्रिया हो कि जिसको आप वो टेंशन को डील कर लो और ठीक हो जाओ। एक गलत प्रतिक्रिया होती है, वो गलत प्रतिक्रिया में हम मेंटली बीमार होते हैं।
okay.
वो गलत प्रतिक्रिया में भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं कि जो जिसमें आप रियलिटी के संपर्क में है। उदाहरण के रूप में कि भी तनाव आया तो भी किसी को ये प्रतिक्रिया आई कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं निराश हो रहा हूँ, मुझे चिंता हो रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, है ना। तो ये सब भी हुआ, परंतु आगे जो हमने चर्चा की है कि भी एंजाइटी हो गई है, उसको डिप्रेशन हुआ, परंतु दूसरी प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि लोग मेरे पीछे लगे हैं, लोगों ने मेरे अगेंस्ट प्लान बनाया है। जैसे एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि भी किसी को बिजनेस में 1 करोड़ का लॉस हो गया और उसकी कैपेसिटी नहीं है, 1 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है उसके लिए, है ना, तो एक तो ये हो सकता है कि वो निराश हो, उसकी नींद उड़ जाए, है ना, वो एंग्शियस हो, कैसे होगा क्या होगा सोचने लगे। और दूसरा वह उसकी एक ना साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। अगर उसकी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म अनरियलिस्टिक होगी, जिसको कहेंगे अनरियल, जो रियल नहीं है ऐसी, तो उसमें ये हो सकता है कि भी लोग मेरे अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ये लोग मेरे को मारने वाले हैं। और आगे बढ़ता जाए तो ये भी हो सकता है कि ये लोग मुझे टीवी में दिखा रहे हैं, यहाँ सारे कैमरेज लगे हुए हैं, ये लोग सब मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे एटलीस्ट मुझे 2-3 के सब भी याद आ रहे कि जिनको इस प्रकार से स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, तो वो हिस्ट्री में बड़ा क्लियर कट तुरंत ही एक ही एक, जैसे पहले सेशन में वो बोल रहे, थोड़ा सा भी पूछ लो तो, कि भाई उनका झगड़ा हो गया
जी।
कि भी पड़ोसी के साथ थोड़ा जोरदार झगड़ा हो गया है ना, कि भी पुलिस को भी बुलानी पड़ी। और फिर एक है कि उसको सही रूप से मैनेज करना, कभी ये व्यक्ति ने गलत रूप से उसको मैनेज किया तो अंदर में ऐसा ऐसा है कि अभी वो लोग मेरे प्रोग्राम प्लान बना रहे हैं, मेरे सामने कुछ कर रहे हैं, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, सब भ्रम होने लगा।
करेक्ट, तो क्या ये सस्पेक्टिकल बिहेवियर हो जाता है?
वो एक हाँ, उसका एक सिम्टम है कि सस्पिशन हो गया।
ओके,
वो गलत साइज सस्पिशन,
मतलब शक हो जाना,
हाँ, कि ऐसा करेंगे। जैसे दूसरा एक ऐसा ही किस्सा है कि भाई ये लोग ने एकदम नॉर्मल है कि भी उनकी बेटी का किसी से नहीं थोड़ा रिलेशन हो गया, प्यार हो गया, और उसने कहा कि भी मैं उससे शादी करूंगी। ऐसा देखो तो बहुत अच्छा है कि ढूंढने जाओ तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुमको, ना। लेकिन वो बहन के मन में ये आ गया कि भी अभी हमारी बिरादरी में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलने वाले कि ये कैसी है, इतना भी अपनी बच्ची को मैनेज नहीं कर पाई, क्या किया इसने, ऐसा किया। तो उसके मन में आ गया कि भी ये सब मेरे अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं,
मम्मी के मन में,
हाँ, उसकी मम्मी के मन में, वो पेशेंट हो गई।
करेक्ट,
कि मेरे अगेंस्ट में लोग प्लान बना रहे, ऐसा सब बोल रहे, वो बोल रहे, वो बोल रहे ऐसे।
तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ इस बीमारी के बारे में, कि व्यक्ति के अंदर में शक की बीमारी आ जाती है, कि हर चीज में शक करने लगे।
नहीं नहीं, शक नहीं, कि तनाव आया, समस्या ही कहेंगे, लेकिन समस्या का सामना करने के 2 तरीके हो सकते हैं।
करेक्ट,
एक हाँ, तो करेक्ट, एक ऐसा तरीका कि जिसमें सत्य आसपास में है, कि मुझे चिंता हो रही है, पैसे कहाँ से आएंगे, लोग मुझे फोन करेंगे तो क्या होगा, है ना, मेरी भूख मर गई, मुझे नींद नहीं आ रही है, है ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मुझे हाथ में पसीना होने लगा, वो सब सत्य के आसपास है ना, तो वो डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई। और अभी स्किज़ोफ्रेनिया वो है कि वो असत्य आ गया,
Okay.
कि भी लोग मेरे पीछे लगे हैं, लोग मेरे अगेंस्ट में प्लान बना रहे हैं, अभी ना पुलिस आ जाएगी, पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगी, है ना
जी।
ऐसा बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में
जी।
कि वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वो सत्य से विपरीत है, कोई भी बोलेगा
okay.
आम व्यक्ति भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना
जी।
और वो स्टार्ट, वो जो रिएक्शन है वैसे होता
जी, मैं समझ
जी जी।
डॉक्टर साहब, ये तो हमने समझ लिया कि ये होती क्यों है, अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेडिकली भी इसे ट्रीट किया जा सकता है,
ये भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भी प्रकार क्या क्या है।
हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
कि भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, है ना?
करेक्ट,
उसमें बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं ना
जी।
और उतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आम हमारे जो दर्शक भाई बहन है उनके काम की चीज है
जी।
अगर मुझे डॉक्टरों को सिखाना है ना, मुझे मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाना है, तो और कुछ मैं बताऊंगा
जी,
क्योंकि ना फिर सारी बात अलग से आ गई। हमारा प्रोग्राम है उसमें हम आम जनता को एजुकेट करना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से अगर ये सारी बात को देखनी हो तो उसके जो प्रकार है ना, उसमें 2 चीजें है कि वो गुस्सा करता है ना, किसको मार देगा, या तो चिल्लाता है, गालियां देता है ना, कि भाई चाकू लेके बैठ गया, कि भी लोग आए उसका मैं खून कर दूंगा किसका। और रामन राघवन सुना होगा आप, शायद आपका जन्म भी नहीं होगा तब, हम बहुत छोटे थे, वो बड़ी दहशत हो गई थी तब कि रामन राघवन ने कईयों को मार दिया था, है ना। हाँ, तो उसको ये होता था कि कोई देवी शक्ति मुझे बोल रही कि इन सबको मार दो, है ना। बाद में बहुत समय के बाद पकड़ा, उस पर एक फिल्म भी बनी, तो वो ये सब एक्टिव सिम्टम्स बोल सकते हैं. सो दूसरा कहेंगे वो है पैसिव सिम्टम्स, जो बोलेगा ही नहीं. आधे घंटे तक उससे बात करना, एक शब्द तो उसके मुख से नहीं निकलेगा, ऐसा ही बैठा रहेगा. आपको लगेगा ये डिप्रेस्ड है. जिसको नॉलेज नहीं है ना पूरा मनोविज्ञान का, वो कई बार गलत डायग्नोसिस हो जाता है कि भी इसको डिप्रेशन हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है.
Correct.
वो स्नान नहीं कर रहा है, ये भी पड़ा रहा है सारा दिन, खाता नहीं है ना, मार दो तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा. तो ऐसे कि उसको कुछ दिल नहीं हो रहा है ना. हाँ, तो ये सब जैसे एक प्रकार से कहेंगे कि नीचे के, लेकिन उसको बोला नेगेटिव सिम्टम्स एक दो. जो दूसरा भी सिज़ोफ्रेनिया के जो प्रकार समझने की एक जो जरूरत है, एक है कि उसके कुछ सिम्टम्स भी कह सकते कि भी डायग्नोस्टिक वे में शायद आम लोगों के लिए इतना फायदा नहीं है. एक तो है जिसको कहा हेलुसिनेशंस, कि भी कुछ सचमुच नहीं है लेकिन उसको दिख रहा है.
Okay.
कि जो औरों को नहीं दिख रहा है उसको दिख रहा है. भी औरों को नहीं सुन रहा है उसको सुन रहा है. वो स्मेल का भी हो सकता है कि उसको लग रहा है कि कुछ यहाँ स्मेल आ रही है, कि जो और बोलेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है. है ना. तो इस प्रकार के हेलुसिनेशंस. अभी दूसरा पूरा है डिल्यूजन्स. डिल्यूजन क्या है? गलत आइडियाज. ये जैसे कि लोग मेरे पीछे लगे हैं, है ना, इन्होंने प्लान बनाया है मुझे मारने का. या तो ऐसे भी कि भी मैं महात्मा गांधी हूं. है ना, कि भी कोई स्पिरिचुअल करता हो तो कहेगा कि मैं विवेकानंद हूं. हमारे पास आते हैं, मैं ब्रह्मा बाबा हूं. है ना, तो भी उसको एक हो गलत डिल्यूजन हो गया पूरा इस प्रकार से.
है ना,
तो ये दो चीजें देखेंगे ना, तो मेजर है. फिर तो बहुत सारी उसके ना कई अलग अलग प्रकार है कि जो जैसे कि आम लोगों के लिए इतना नहीं है. कि भी एक ने सिंपल सिज़ोफ्रेनिया, हाइबरफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया, ऐसे अलग अलग चीजें हैं. है ना, सिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं. परंतु मेन इससे भी आम लोगों के लिए ये बात समझना जरूरी है कि ऐसी कोई भी बात आए, जैसे कोई भी हेलुसिनेशंस हो, कोई भी प्रकार के डिल्यूजन्स हो, अगर व्यक्ति डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, एकदम वो शांत हो गया, कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप हो गया, काम नहीं करता है, बैठा रहा है ना, तो फिर अभी मेन तो बेस्ट तो है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए.
करेक्ट.
और भी जो थोड़ा सा अनुभवी है. है ना, क्योंकि नहीं तो जैसे मैंने कहा ना कि सिज़ोफ्रेनिया ना डिप्रेशन के रूप में कई बार उसका डायग्नोसिस हो जाता है.
करेक्ट.
और फिर वो गलत है. तो इसके आधार से, और अभी इसमें तो मैं तो ये भी कहूंगा, अधिकतर तो बेस्ट है कि पेशेंट को ले जाना चाहिए.
ठीक
है ना, क्योंकि वो मामूली चीज से भी समझ में आए. परंतु इसमें 90% से ज्यादा पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते कि हम डॉक्टर के पास क्यों आए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है.
करेक्ट.
है ना, तो ऐसे किस्सों में मैं समझता हूं कि पेशेंट को न देखे बिगर भी डॉक्टर ऑलमोस्ट 80% तो निर्णय पर आ सकता है.
अच्छा.
आज कई बार डॉक्टर कहते हैं नहीं, पेशेंट को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे.
करेक्ट.
परंतु जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि पेशेंट आने को तैयार ही नहीं है, उसको जबरदस्ती कैसे लाए. तो फिर तो क्या करें,
शायद उन्हें अनकॉन्शियस करके फिर
नहीं, नहीं, लेकिन वो जिससे मैं, जो मैंने अनुभव किया, शायद सभी एक्सपर्ट मेरी बात को एक्सेप्ट ना भी करे
जी.
वो 100% मैं एक्सेप्ट करता हूँ. मेरा एक्सपीरियंस कम है, शायद मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, कि वो जरूरी है. क्योंकि एक छोटी सी बात भी आपकी मिस हो गई तो डायग्नोसिस गलत हो जाएगा.
correct,
है ना.
करेक्ट.
परंतु फिर भी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि मोर देन 80% जो रिलेटिव्स इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, उसके आधार से काफी डायग्नोसिस हो सकता है. मैंने ऐसे कई पेशेंट ट्रीट किए कि जिसमें और डॉक्टरों का कहना है अभी इसको तो उठा के ले जाना पड़ेगा. अब ये पेशेंट को इंजेक्शन दे के हम अनकॉन्शियस करके लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, एडमिट कर देंगे. मैं उनका आमतौर पर ही बताता हूँ कि चलो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं. कि पूरा समझना जरूरी है, डिटेल में हिस्ट्री लेनी पड़ेगी फैमिली मेंबर से. फैमिली मेंबर से हिस्ट्री लेकर के आज बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनी है इसीलिए, क्योंकि मरीज एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे कोई बीमारी है, कि जो आप वो पानी की तरह ही है वो दवाइयां. बहुत सारी दवाइयां, क्योंकि अधिकतर पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते
जी.
ऐसी है कि जो पानी की तरह ही है, जो पानी में भी मिला सकते हैं, सब्जी में, दूध में, चाय में, किसी को भी पता नहीं चलेगा. और उससे मिरेकल हो सकता है. मेरे कुछ तो पेशेंट हैं कि दे आर एक्टर्स, उन्होंने सीरियल्स किए एक्चुअली, और अगर उनको उठा के ले जाते तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक लगता, एक नहीं स्टिग्मा कि भी माँ बाप ने मुझे पकड़ के लोग लेके गए. हम आगे डिस्कस करेंगे, होता है बाइपोलर डिजीज, जिसमें भी आमतौर पर ये बोलते हैं कि इसको तो उठा के ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसको अनजाने में मेडिसिन दिया. आज वो लोग बिल्कुल नॉर्मल, अपना काम 100% कर रहे हैं. एक लेवल तो ऐसा आया कि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे तकलीफ है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, कि जब वो ठीक हो गए तो
बहुत अच्छा. डॉक्टर साहब, एक नई बीमारी के बारे में हमने जाना जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया. हमने ये जाना कि सबसे पहले कि ये बीमारी होती क्यों है, दूसरा हमने ये जाना कि कितने प्रकार हैं इस डिजीज़ के. आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब.
ओम शांति.
दोस्तों, हम आज तक ये मानते आए कि तन की ही बीमारियां होती हैं. आज हमने ये जाना कि मन की भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी. उन्हीं कुछ बीमारियों के बीच में एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की. अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से हम बाहर भी निकल सकते हैं और मेडिटेशन हमें किस प्रकार हेल्प करता है इससे बाहर निकलने के लिए. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान. ओम शांति.